इसके पश्चात यादव महारथी सात्यकी बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनकी सेना को भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। फरसा, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिघ, यष्टि मन, लाठी, पाश, तलवार, धनुष और तरह तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप्त उठी थी। वह सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इस तरह एक अक्षौहिणी सेना लेकर चेदिराज धृष्टकेतु आया, एक अक्षौहिणी सेना जरासंध का पुत्र मगधराज जयत्सेन लेकर आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह तरह के योद्धाओं के साथ पांड्यराज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय एवं बड़ा ही शक्ति संपन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपद की सेना भी अपने महारथी पुत्रों और देश देश से आए हुए शूरवीरों के कारण बड़ी भली भली मालूम दे रही थी। सेना महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश देश से आए हुए शूरवीरों के कारण बड़ी भली भांति जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे, वह भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार जहां तहां के आकर सात अक्षौहिणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हो गए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौहिणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देश के वीर थे। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। ऋधिक के पुत्र कृतवर्मा, भोज, अंधक और कुकुरवंशीय यादव वीरों सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु सौवीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी कई अक्षौहिणी सेना आई। कंबोज नरेश, सुदक्षिण, शक और यवन वीरों सहित वहां आया। उसके साथ एक अक्षौहिणी सेना थी। इसी प्रकार माहिष्मतिपुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित वहां आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद ये भी एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए। केकय देश के राजा पांच सहोदर भाई थे, उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरुराज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहां तहां से आए वे अन्य राजाओं की तीन अक्षौहिणी सेना और हो गई। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई और इधर पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। वह तरह तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनद, कुरुजांगल, रोहित वन, मारवाड़, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, ये सारा धनधान्य पूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह सब कौरव सेना भी देखी। तदनंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंच गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने पांडवों का दूत समझकर उसका बड़ा स्वागत किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया और पीछे उनकी कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा, यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। अतः पिता के धन पर धृतराष्ट्र और पांडु दोनों का समान अधिकार है, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडवों के पुत्रों को नहीं मिला, इसका क्या कारण है? आप लोग विचार कीजिए। कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, उनका प्रारब्ध था, इसलिए ये उन्हें यमलोक नहीं भेज सके। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन कर दिया, आश्चर्य है। और इधर पांडव धर्म के कारण 13 बरस तक वन में रहने के लिए विवश हो गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता करना चाहते हैं। अतः पांडवों और दुर्योधन के बर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितेशियों का कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझाएं। पांडव वीर है तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आखिर ये एक ही वंश है, सब एक है, इस एकता को भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जनसंहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है वो सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि पांडव किसी भी बल में कम नहीं है। युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी सेना तो इकट्ठी हो गई है, युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जो रही है। इसके सिवा पुरुषिंह सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये अकेले ही कितनी अक्षौहिणी सेना के बराबर, हजारों अक्षौहिणी सेना के बराबर है। एक ओर से 11 अक्षौहिणी सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु कृष्ण भी हैं। पांडवों की सेना की प्रबलता, अर्जुन का पराक्रम और कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने के लिए तैयार होगा? अतः धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान करें। यह उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चला न जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और समयोचित वचन कहते हुए उन्होंने सारी सभा को अपने भाव सुनाए। कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक है। ये जानकर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता भी प्राप्त है, साथ ही यह भी आनंद का विषय है कि वे धर्म में तत्पर हैं। वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार कर अपने भाई बंधुओं से संधि करना चाहते हैं, यह तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान, शस्त्र विद्या में निपुण महारथी है, भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं, फिर दूसरे धनुर्धारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वो एक अकेला तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म इस प्रकार की बात कह रहे थे उसी समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टता पूर्वक सभा में खड़ा होकर उनकी बात को काटते हुए कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है, फिर भी बारंबार उसे कहने से क्या लाभ है? पहले की बात है, हो गई सो हो गई। शकुनी ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया था, उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे, उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देश के भरोसे मूर्ख के भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं। परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकता, यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में जाओ, फिर 12 वर्ष जाओ, 1 वर्ष अज्ञातवास रहो, उसके बाद आकर वे अपना राज्य मांगे। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू है तो कौरवों के पास भी सेना की कोई कमी नहीं है, वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद रखें। भीष्म बोले, राधा पुत्र, मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है? एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद रख लो, जब विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले 6 महारथियों को जीता था। क्या वो दृश्य तुम्हारे हृदय में अंकित नहीं है? तुम्हारा ये जोश होश उस समय कहां चला गया था? आज जब अर्जुन यहां नहीं है तुम बढ़ चढ़कर बात करते हो। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देख लिया गया जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग इस ब्राह्मण की कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी। भीष्म के वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा, कर्ण, भीष्म जी ने जो कहा है इसी में ही हमारा और पांडवों का हित है, इसी से ही जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र लौट जाइए, आपका मंतव्य मेरे पास आ गया और हमारा मंतव्य आपके पास भी आने वाला है। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया और उसे पांडवों के पास भेज दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं, तुम भी वहां जाकर उनकी सुद ले आओ। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है, आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी कुशल पूछना, वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना पड़ा, इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा, इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था पर कभी कोई दोष पा नहीं सका जिससे इनकी निंदा करूं। धृतराष्ट्र बोल रहा है, ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं, प्रवास से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई, वे सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं, प्रवास माने वनवास आदि में भी। अजमीर वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका इस संसार में शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को ये दोनों बढ़ाते रहते हैं, मूर्ख है। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग हरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन है, भीमसेन है, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण हृदयवंशी वीर है, और सबसे बड़ी ताकत उनके पास धर्म की है और उससे भी बढ़कर उनके पास श्री कृष्ण की है, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजयी एवं दुर्धर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीमसेन के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि बैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त और बलवान है। जैसे दो बाज पक्षियों के समूह को नष्ट कर दें, उसी प्रकार ये दोनों शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ सकते। पांडवों के पक्ष में जो धृष्टद्युम्न एक महान योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। फिर मत्स्य देश का राजा विराट अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है ही, और सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांड्य देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है। सात्यकी तो उनका अभीष्ट सिद्धि में लगा हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान है। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं है, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को यूं ही जलाकर भस्म न कर डालें। मुझे राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना भय है, उतना ही भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी कम नहीं है। क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अतः वे अपने मन में जो संकल्प करेंगे वो पूरा होकर रहेगा। पांडव कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें अपने आत्मा के समान समझते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे, वे उनकी बात टाल नहीं सकते। युधिष्ठिर कृष्ण की बात टाल नहीं सकते। संजय, तुम एक काम करो, तुम वहां मेरी ओर से पांडवों और सृजयवंशी वीरों की तथा कृष्ण, सात्यकी, विराट और द्रौपदी के पांच पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में बैठकर जो अपनी बातें चली हैं उसके विषय में बातचीत करना। देखो जिससे भरत वंश का हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पाए, ऐसी बड़ी पवित्रता से बात करना। जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपप्लव्य में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। उसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है, आप अपने सहायकों के साथ कुशल पूर्वक दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है ना? सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना? राजा युधिष्ठिर ने बड़े विनम्र और मीठे शब्दों से कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है, तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म की कुशल कहो, क्या उनकी हमारे पर पूर्ववत कृपा है ना? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र और महाराज वाल्मीकि कुशल पूर्वक तो है ना? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, पुत्र सहित गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ है ना? भरत वंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट तो नहीं है ना? रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे, बहिने और दोहिते, ये सब निष्कपट भाव से रह रहे हैं ना? राजा दुर्योधन पहले के भांति ब्राह्मणों के साथ समयोचित बर्ताव करता है ना? मैंने जो ब्राह्मणों को वृत्ति दी उसको छीनता तो नहीं है ना? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं क्या? राज्य में लुटेरों के दल को देखकर कभी उनको वीराग्रणी अर्जुन की याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक ही साथ 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब हाथ में गदा लेता है उसको देखकर शत्रु समूह कांप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीम का भी कभी स्मरण करते हैं क्या? महाबली और अतुल पराक्रमी नकुल सहदेव को भूल तो नहीं गए ना? मंदबुद्धि दुर्योधन आदि सब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित हो शत्रुओं की कैद में जा पड़े। उस समय भीमसेन और अर्जुन ने उसकी रक्षा की थी। ये बात दुर्योधन को याद आती है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित न कर सके तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन ही जान पड़ता है। क्या कर, कितनी भलाई करो, मानने वाला नहीं। संजय बोलते हैं, हे पांडुनंदन, आपने कितनी गहराई से बात की है। आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनका कुशल क्षेम आप पूछ रहे हैं वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद हैं। आजकल तो दुर्योधन का भी स्वभाव कुछ बदला लगता है। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों की दी हुई वृत्ति कैसे छीनेगा? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की कभी आज्ञा नहीं देते हैं। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मनी मन बहुत दुखी रहते हैं, कारण कि वे अपने यहां आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्र द्रोह सब पातकों से भारी पाप है। कौन बोल रहे हैं? संजय। किसके बारे में बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र के बारे में। किसको सुना रहे हैं? पांडवों को। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम, रणधीर नकुल सहदेव का सदा स्मरण करते हैं। हे अजात शत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा संजय वंशियों को सुख मिले। यहां जो राजा उपस्थित है उन्हें बुलवा लीजिए, अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ में रखिए, फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है आप उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान, हमारे राजा विराट विराजमान, सात्यकी विराजमान, हम सब भाई बैठे हुए हैं, संजय भी है, सुना दो धृतराष्ट्र का जो संदेश है। संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहां भेजा है। मैं समझता हूं भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को स्वीकार करेंगे, इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता, सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं। उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े दयालु और दानी हैं, स्वभावतः बड़े संकोची और शीलवान हैं और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव ही नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट ही हो जाता है। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है? जिसके करने में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहां तो जय और पराजय दोनों ही समान है। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए, जो न धर्म का साधक है न अर्थ का है? यह भगवान वासुदेव है, सब में वृद्ध पांचाल राज द्रुपद है। इन सब को प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूं, मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकराएंगे नहीं, और तो क्या, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूं। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। पितामह भीष्म और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर आप भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूं कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम तो जानते हो हमने वन में कितना क्लेश उठाया, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, यह तुमसे छिपा नहीं है। अब भी यदि सब कुछ वैसा ही हो सकता है, तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु यह तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस दे दे। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है, ये बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जाती है। यद्यपि ये जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर आप अपने कीर्ति का नाश न करो। अजात शत्रु, यदि कौरव युद्ध के बिना तुम्हें अपना राज्य भाग न दे सके तो भी मैं अंधक और वृष्णिवंशीय राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूं, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय रहने वाला है। संजय बोलता है, अब देखो संजय की वाणी से ही लगता है वो इंद्रप्रस्थ का राज्य देना नहीं चाहते और के भीख मांग लो कोई बात नहीं, मैं अंधक और वृष्णिवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूं, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है, वह सदा ही क्षीण होने वाला, दुखमय और चंचल है। अतः पांडव, यह नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है, उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है तथा जो मूर्खता के कारण परलोक पर अविश्वास करता है, वह अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बड़ा कष्ट भोगता है। परलोक में जाने पर भी वह अपने पहले के किए हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं कर पाता। पहले तो पाप पुण्य ही मनुष्य के पीछे चलते हैं, फिर मनुष्य को इनके पीछे चलना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है, पहले तो पाप पुण्य मनुष्य के पीछे चलते हैं, मर जाएगा तब फिर देखना, फिर मनुष्य को इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म क्रिया किया जा सकता है, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाले अनेकों पुण्य कर्म किए हैं, सत्पुरुषों ने बड़ी प्रशंसा की है। इतने पर भी यदि आप लोगों को यह युद्ध रूपी पाप कर्म करना है तब तो चिरकार के लिए आप वन में जाकर रहें, यही अच्छा है। आप युद्ध मत करो, वो नहीं देते हैं तो मत ले, जंगल में बैठे रहो, क्यों युद्ध करो? वनवास में दुख तो होगा पर वो धर्म का पालन होगा। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती, आपने क्रोध वश में कर रखा है। इसलिए क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। फिर बताइए क्या कारण है कि जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, संजय तुम्हारा कहना ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूं वे धर्म या अधर्म है इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म चोला पहन लेता है, कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है, कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा करते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म है। अर्थात ऐसी शांति रखना ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का नहीं है, ये बताना चाहते हैं। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा करते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरों के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं, तथापि आपत्ति काल में इनका अदल बदल भी हो जाता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है वह उसी के लिए प्रमाणभूत है, दूसरों के द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्वथा नष्ट हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके उसका आश्रय लेना चाहिए। जो आपत्ति काल न होने पर भी उस समय के धर्म का पालन करता है तथा जो वास्तव में आपदग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता, दोनों ही निंदा के पात्र हैं। जीविका का मुख्य साधन न होने पर भी ब्राह्मणों का नाश न हो जाए इसके लिए विधाता ने अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्वादि के बंधन से मुक्त होने के लिए संन्यास लेने के पश्चात सत्पुरुषों के यहां से भिक्षा लेकर निर्वाह करना चाहिए, उनके लिए शास्त्र का ऐसा विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, जो सबके लिए अपने अपने धर्मों का पालन ही उत्तम बताया है, मेरे पिता पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्ग को मानते आ रहे हैं तथा यज्ञ की इच्छा से वे जो जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मों को मानता हूं, इनसे अतिरिक्त नहीं, अतः मैं नास्तिक नहीं हूं। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव है, वे सभी मुझे प्राप्त हों तो भी मैं उन्हें अधर्म से नहीं लेना चाहूंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण है। ये समस्त धर्मों के ज्ञाता कुशल नीतिमान ब्राह्मण भक्त मनीषी हैं, बड़े बड़े बलवान राजाओं तथा भोज वंश का शासन करते हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूं, तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार मेरे सामने प्रकट करें, क्योंकि इन्होंने दोनों पक्षों का हित साधन सोचा है। इनको अभीष्ट भी यही है कि दोनों पक्षों का हित हो। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान है, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय है, मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। भगवान कृष्ण ने कहा, संजय जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूं, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूं, उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभकामना करता हूं। मेरी एकमात्र यही इच्छा है दोनों पक्ष शांत रहे। राजा युधिष्ठिर को भी शांति प्रिय है, ये बात सुनता हूं और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूं। परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। तुम ये जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्म लोप की शंका तुम्हें क्यों हुई? ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं, अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसे तुम्हें धर्म का लोप क्यों बता रहे हो? इस प्रकार के गार्हस्थ्य जीवन का भी विधान तो है ही, उसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए, क्षत्रियों में थोड़ा ही। कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्मियों के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं, कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं, परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी के लिए गृहस्थियों के घर भिक्षा का विधान है, इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इनमें कर्म को त्याग कर केवल संन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं, दुर्बल है, उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है। संजय, तुम संपूर्ण लोगों का धर्म जानते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हट क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं, अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ, शस्त्र आदि से भलीभांति संपन्न भी है। पांडव स्वधर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहे हैं और क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो उन्हें वो मृत्यु उत्तम मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो तो ये बताओ कि युद्ध करने से राजाओं का धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से होता है? इस विषय में मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूं। पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसका साथ दे रहे हैं, कोई भी प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टि नहीं डाल रहा है। लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले, दोनों ही दशा में वो निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है, उसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हत्याना चाहता है, किंतु पांडवों का राज्य तो धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे अधिकार जमा सकते हैं? दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में फंसे जा रहे हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था उस महान कर्म पर जब भी दृष्टि जाती है उस समय हमको बड़ा कष्ट होता है। सोचो, पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी रजस्वला की अवस्था में सभा में लाई गई, पर भीष्मादि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखा। उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोकते तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी महान हित होता। इस बात की जलन मेरे हृदय में कम नहीं है। सभा में बहुत से राजा लोग एकत्रित थे, क्या उनमें दीनता आ गई थी? किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं हुआ? ऐसी कौरव सभा, एक केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया। कहां गए भीष्म, कहां गए द्रोण, कहां गए कृपाचारी, कहां गए धृतराष्ट्र? धर्म का पाठ हम युधिष्ठिर को बताने आए हैं। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडुनंदन युधिष्ठिर को भी धर्म का उपदेश करना चाहते हो। द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया। उस द्रौपदी के प्रभाव को ही भूल रहे हैं, उसे वहां कितना अपमान सहना पड़ा। सभा में वह अपने ससुरों के पास खड़ी थी तो भी उसे लक्ष्य करके सूत पुत्र कर्ण ने कहा, याज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है, दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। तेरे पति तो दाव में हार चुके, अब किसी दूसरे पति को वर लो। जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृग चर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुशासन ने ये कितनी कड़वी बात कही। ये सब के सब नपुंसक अब नष्ट हो गए हैं, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिरे जा रहे हैं, ये शब्द है उनके। संजय, कहां तक कहूं, जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए उन सबको तुमने अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा था वो कुदृश्य, तो इस बिगड़े हुए कार्य को बचाने के लिए अब मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूं। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका तो मैं अपने इस कार्य को बहुत बड़ा पुनीत और अभ्युदय कार्य समझूंगा, और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। कौरव लताओं के समान है और पांडव वृक्ष की शाखाओं के समान है। इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हैं, और यदि वो युद्ध चाहें तो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करें। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं, इसका अर्थ यह नहीं है इनका राज्य इसलिए कौरवों को दे दो, इसलिए भिक्षा मांगो कि तुम धर्म करते हो। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं, फिर भी वे शक्तिशाली योद्धा हैं और बुद्धिमान हैं, इसलिए वो संधि की भी बात करने के लिए तैयार हैं। तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना। जिस प्रकार मैंने तुमको कहा है उसी भाव भंगिमा और उन्हीं कृत्यों का दृश्य याद कराते हुए धृतराष्ट्र को सुनाना। संजय ने कहा, पांडुनंदन आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूं, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से यदि कुछ आपको कह दिया, आपको कष्ट हुआ हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। युधिष्ठिर बोले, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो, तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी हैं, तुम शीलवान हो, संतोषी हो, इसलिए मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती, कटुवचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं होता। संजय, तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। वहां जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों, वनवासी तपस्वियों से और बड़े बूढ़े सब लोगों से हमारा प्रणाम कहना। बाकी जो लोग हैं उनसे हमारा कुशल समाचार कहना। जो प्रजा का पालन करते हुए राज्य में निवास करते हो उन क्षत्रियों तथा जो राष्ट्र के भीतर व्यापार करके आजीविका चला रहे हों, उन वेश्यों से हमारी कुशल मंगल की बात कहना, आचार्य द्रोण से प्रणाम की बात कहना, अश्वत्थामा को कुशल क्षेम पूछना, कृपाचार्य के घर जाकर मेरी ओर से उनका चरण स्पर्श करना, उनमें शूरता निशंसता का अभाव, तपस्या बुद्धि शास्त्र ज्ञान सत्व और धैर्य आदि सभी गुण विद्यमान है मेरे पितामह उन भीष्म के चरणों में, मेरे भाइयों सहित नाम लेकर प्रणाम कहना, धृतराष्ट्र को प्रणाम करके मेरा कुशल कहना, दुर्योधन दुशासन तथा कर्ण आदि से कुशल क्षेम पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन वसाती शाल्वक केकय अम्बष्ट त्रिगर्त तथा पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांतों के राजा को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहित हैं, सुशील हैं, सदाचारी हैं, उन सबसे भी मेरा कुशल क्षेम पूछना। वाह युधिष्ठिर, अपने शत्रुओं की भी कुशल क्षेम पूछना। तात संजय, गंभीर बुद्धि वाले दीर्घदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी गुरु स्वामी पिता माता मित्र और मंत्री हैं, उनको मेरी ओर से खूब खूब कुशल पूछना। कुरुकुल के जो सर्वगुण संपन्ना बड़ी बूढ़ी स्त्रियां माताएं हैं, उन सब के चरणों में हमारा प्रणाम कहना। वहां जो हमारे भाइयों की स्त्रियां हैं, उन सब की कुशल पूछना। वे सुंदर कीर्ति युक्त और प्रशंसनीय आचरण वाली स्त्रियां सुरक्षित रहकर सावधानता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रही है ना, उनसे ये भी पूछना। देवियों, तुम अपने ससुरों के साथ कल्याणमय तथा कोमल बर्ताव तो करती हो ना, क्योंकि स्त्रियों को अपने सासू अपने ससुर अपने परिवार वालों के साथ कोमल बर्ताव के समान कोई दूसरा तपस्या का स्वरूप नहीं है। तुम लोगों पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहे वैसा तुम व्यवहार करती रहती हो ना, ये सब मेरी ओर से उन सबको पूछना। सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करते हैं ना, तुम्हें सब प्रकार के भोग तो देता है ना, काने खोड़े कुबड़े लंगड़े लूले दरिद्र तथा बोने मनुष्यों से भी जिनका दुर्योधन पालन करता है मेरी ओर से कुशल क्षेम पूछना। दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी है, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, मैं उनको पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूं, इस प्रकार तुम व्यवहार करना। इसी प्रकार राजा के यहां जितने अभ्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो दूत आए हों, उन सब की मेरी ओर से कुशल क्षेम पूछना और मेरा भी उन्हें कुशल सुना देना। यद्यपि दुर्योधन ने जैसे योद्धाओं का संग्रह किया है वैसे इस पृथ्वी पर दूसरे नहीं है, तथापि धर्म ही नित्य है, मेरे पास तो शत्रु का नाश करने के लिए एक ही सबसे बड़ा शस्त्र है और वो है धर्म। धर्म महाबलवान है। संजय, दुर्योधन को तुम ये बात भी सुना देना, तुम्हारे हृदय को जो ये कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, सो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है, तुम व्यर्थ में ही अपने मन के अंदर ये शूल लेकर चल रहे हो। हम ऐसे नहीं है जो चुपचाप तुम्हारा प्रिय कार्य होते देने दें और हम रो मारे मारे फिरते रहे। भारतवीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध तो नहीं दोगे तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, पर तुम्हारे द्वारा किए गए बर्ताव से हमको युद्ध करना पड़ेगा। संजय, सज्जन असज्जन बालक वृद्ध निर्बल बलवान सब विधाता के वश में है। मेरे सैनिक बल की जिज्ञासा करने पर भी तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओर से कुशल पूछना और कहना कि आपके ही पराक्रम से पांडव सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। जब वे बालक थे तब आपकी कृपा से उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्य पर बैठाकर अब उन्हें नष्ट होते देख आप पांडवों की उपेक्षा न कीजिए। संजय यह भी बताना कि हे धृतराष्ट्र, यह राज्य एक ही के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें, ऐसा होने पर आप कभी शत्रुओं के वश में नहीं होंगे। इसी तरह पिता में भीष्म को मेरा नाम लेकर सिर झुकाकर उनके चरणों में मेरी ओर सिर रखकर प्रणाम करते हुए कहना, पितामह है, ये शांतनु का वंश एक बार डूब चुका है, आप ही ने इसका उद्धार किया है। अब आप अपनी बुद्धि से विचार कर ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन धारण कर सके। इसी प्रकार मंत्री विदुर जी से भी कहना, सौम्य आप युद्ध न होने की सलाह दें, क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। इसके बाद दुर्योधन से बार बार अनुनय विनय करके तुम समझाना कि दुर्योधन तुम कौरवों के नाश का कारण मत बनो। पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी बड़े बड़े क्लेश सह चुके हैं, ये बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस अपराध का भी हमने कोई ख्याल नहीं किया, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। तुम दूसरों के धन से अपनी लोभ युक्त बुद्धि हटाओ, ऐसा करने से शांति होगी, परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन अविस्थल वृकस्थल माकंदी वारणावत और पांचवा कोई एक गांव दे दो जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम पांच भाइयों के पांच ही गांव दे दो जिससे शांति बनी रहे। संजय मैं शांति रखने में समर्थ हूं और युद्ध करने में भी समर्थ हूं। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का मुझे ज्ञान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूं और समय के अनुसार कठोर भी बन सकता हूं। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले संजय ने सबको प्रणाम किया और वहां से वे प्रस्थान कर चुके। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।